ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की मतगणना अंतिम चरण में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 में मतगणना जारी। पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक समन्वय को जारी रखते हुए हवाई उड़ान संचालन की संभावना का अध्ययन करने का निर्णय। विदेश सचिव के संयोजकत्व में गठित इमरजेंसी रिस्पांस टीम का फैसला। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध। और ईरान द्वारा युद्ध और लंबा खींचने की बात कहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर और अधिक घातक हमले की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। फागुन 21 को हुए प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के अंतर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अब तक कुल मतगणना के परिणाम इस प्रकार है। अब तक की मतगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा को सबसे अधिक 51,07,256 मत प्राप्त हुए हैं, ऐसा निर्वाचन आयोग ने बताया। इसी प्रकार नेपाली कांग्रेस को 17,32,727 मत प्राप्त हुए, जबकि कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को 14,40,807 तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी को 7,93,414 मत प्राप्त हुए हैं। श्रम संस्कृति पार्टी को 3,73,925 तथा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 3,28,412 मत प्राप्त हुए हैं, ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। प्रतिनिधि सभासद प्रत्यक्ष की ओर 164 स्थानों की अंतिम मत परिणाम अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 125 स्थानों में जीत हासिल करके सबसे बड़ी दल बन चुकी है। इसी तरह नेपाली कांग्रेस ने 18 स्थानों में, नेकपा एमाले 9 स्थानों में, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी 7 स्थानों में, श्रम संस्कृति पार्टी 3 स्थानों पर, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवार ने एक एक स्थान पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर नेपाली जनता और नेपाल सरकार को बधाई दी है। काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अनुसार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री इसाक दर ने एक संदेश के माध्यम से नेपाल सरकार और नेपाली जनता को हार्दिक बधाई दी है। पाकिस्तान ने नेपाल के साथ अपने भाईचारे वाले संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंध और अधिक मजबूत होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है। इसराइल ने नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर नेपाल सरकार और नेपाली जनता को बधाई दी है। नेपाल के लिए इसराइली राजदूत स्मुलिक एरी बास ने आज काठमांडू में नए पश्चिम एशिया में नई सुबह विषय पर आयोजित प्रेस सम्मेलन में कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल नेपाल के साथ द्विपक्षीय मित्रता और सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल से नेपाल के लिए चीनी राजदूत चांग माओमिंग ने उनके कार्य कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। उस अवसर पर नेपाल चीन संबंधों तथा आपसी सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने राजदूत चांग के कार्यकाल की सफलता की कामना करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। परराष्ट्र सचिव के संयोजकत्व में गठित इमरजेंसी रिस्पांस टीम की बैठक ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक समन्वय को जारी रखते हुए हवाई उड़ानों के संचालन की संभावना का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय में आज हुई बैठक में पश्चिम एशिया में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और हित संरक्षण के विषय में नेपाल सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों और प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही दूतावासों के संपर्क में आए नेपाली नागरिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया क्षेत्र में विकसित परिस्थितियों के संदर्भ में वहां मौजूद नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और हित संरक्षण के लिए समग्र स्थिति का प्रभावी, संभावित और त्वरित प्रबंधन में उद्देश्य से गठित टीम आवश्यक कार्य कर रही है। जवाबदेहता निगरानी समिति ने गत भाद्र 23 और 24 की घटनाओं से संबंधित जांच बूझ आयोग की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। समिति ने आयोग की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर पीड़ित समुदाय, नागरिक समाज, मीडिया तथा आम नागरिकों के सूचित होने के अधिकार का सम्मान करने की मांग की है। समिति के संयोजक राजू प्रसाद चापागाई ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आयोग की रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण अचानक बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम धुंधला होने के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। पर्यावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञानराज सुवेदी ने कहा कि लंबे समय तक वर्षा न होना और हवा न चलने के कारण मौसम धुंधला हो गया है, जिससे प्रदूषण बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वायु प्रदूषण के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकले और मास्क का उपयोग करे। उन्होंने कहा, कुछ समय से उपत्यका सहित देश के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ नहीं हो पाया है, धूप नहीं निकलती है और वर्षा भी नहीं हुई है, हवा भी नहीं चल रही है। उन्होंने आगे कहा, मौसम साफ होने के बाद प्रदूषण कम होगा, लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ने पर आवश्यक सावधानी अपनाना जरूरी है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञानी संजीव अधिकारी ने बताया कि आज से मौसम में सुधार आएगा और धुंध हटने लगेगी। पर्यावरण विभाग के अनुसार मौसम साफ होने के बाद ही वायु प्रदूषण कम होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार आज शाम 4 बजे तक काठमांडू उपत्यका का वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 पहुंच गया है। इसके साथ ही काठमांडू विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर सूचीबद्ध हुआ है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस अब कुछ देर विज्ञापन।
के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ने कहा है कि किसी भी डर, भय या धमकी के माहौल में न्याय प्रदान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुशासन की स्थापना केवल न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निर्भीकता से ही संभव है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सारंगा सुवेदी ने कहा कि आज भी हर कदम पर क्षमता की परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए महिलाओं को एक दूसरे की क्षमता पर विश्वास करते हुए परिणाममुखी तरीके से काम करना चाहिए। कार्यक्रम में महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी बराल ने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व क्षमता बढ़ाकर न्याय के क्षेत्र में न्याय, समानता, सहभागिता और समावेशिता को आगे बढ़ाना चाहिए। घर लिपने पोतने के लिए मिट्टी खोदने गए यहां की सायल गांवपालिका ग्वाली की 16 वर्षीय किशोरी एलिना सिंह की मिट्टी का ढेर गिरने से दबकर मृत्यु हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार आज सुबह लगभग 9:48 घर के नजदीक गौशील नामक स्थान पर मिट्टी खोदने के दौरान ढिस्को गिरकर दब जाने से सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस निरीक्षक सुवर्ण चंद के नेतृत्व में 4 सदस्यीय पुलिस टोली घटनास्थल की ओर रवाना हुई है। रुकुम पश्चिम के बाफी कोट गांव पालिका 3 के भागले के पास सानी भेरी नदी में आज 2 किशोरियों के शव मिले हैं। उनके साथ गई एक अन्य किशोरी अभी भी लापता है। लापता किशोरी की तलाश जारी है, ऐसा जिला पुलिस कार्यालय ने बताया है। बाफीकोट गांवपालिका 3 गराला गोठ की 14 वर्षीय उर्मिला ओली और उसी स्थान की 12 वर्षीय कल्पना ओली का शव भागले के पास सानी भेरी नदी के किनारे मिला है। यह जानकारी जिला पुलिस के पुलिस निरीक्षक हरिप्रसाद पुन ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिम एशिया में भारी भीषण संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहां ईरान को चेतावनी दी गई है, होर्मुज जल्डर रूम मध्य में गुरजने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई है तो अमेरिका 20 गुना ताकत से ईरान पर हमले करेगा। बता दें कि पुतिन ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा था कि रूस ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए सहयोग करने को तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने दावा किया कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है और यदि वह नियमों और शर्तों के अनुसार बात करता है तो हम भी तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सामरिक क्षमता को बुरी तरह से तबाह किया जा चुका है। हालांकि IRGC ने ट्रंप के दावा को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध कब तक खत्म होगा यह तेहरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उसके ऐसे ठिकानों पर निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य वैश्विक बाजार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इस मार्ग पर चीन सहित कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली की मतगणना अंतिम चरण में 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 में मतगणना जारी। पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक समन्वय को जारी रखते हुए हवाई उड़ान संचालन की संभावना का अध्ययन करने का निर्णय। विदेश सचिव के संयोजकत्व में गठित इमरजेंसी रिस्पांस टीम का फैसला। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध। और ईरान द्वारा युद्ध और लंबा खींचने की बात कहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर और अधिक घातक हमले की दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।